प्रिय श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें विश्वास है कि आप सब हमारे इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की पहली पत्री का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है संगति। सुसमाचार का लेखक यूहन्ना इस पत्री में गूढ़ ज्ञानवादियों के विरुद्ध लिखता है, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह की मानवीयता तथा ईश्वरत्व दोनों की वास्तविकता को अस्वीकार किया था। जी हाँ श्रोताओं, इस पत्री का उसके सुसमाचार से बहुत निकट संबंध है। इन दोनों में प्रभु यीशु मसीह तथा अनंत जीवन पर जोर दिया गया है। ये जीवन उन्हें मिलता है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। तो श्रोताओं, सबसे पहले आज के इस अध्ययन में इसकी रूपरेखा पर ध्यान देंगे, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से कर दिया है जीवन नया। हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। हम पापी थे, पापी मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। हम पापी थे, पापी मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। कैसा महान प्रेम उसने हम पर किया, हम उसको दे धन्यवाद। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, दे धन्यवाद। अब जो मसीह ने उस पर दंड नहीं है, मसीह के लहू से सब माफ किया है। अब जो मसीह ने उस पर दंड नहीं है, मसीह के लहू से सब माफ किया है। मसीह के राह पर हम चलते रहे, किया है हमको आजाद। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। दे धन्यवाद। हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि हम सब आज एक नई पुस्तक से अपने अध्ययन को आरंभ करने जा रहे हैं, नए नियम में से यूहन्ना की पहली पत्री। इसके परिचय को हम लोग आज देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए जिसे आप हमें देते हैं ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम फिर से आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, सीखते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के मन और दिल को खोल दें, हमें बुद्धि ज्ञान और समझ दें, ताकि प्रभु आपका जीवित वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। विशेष करके जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के बाद पहला यूहन्ना की पत्री में आते हैं और इस पत्री में से सीखते हैं, तो हम विनती करते हैं कि आप हमें से हर एक के साथ बोले और बातचीत करें। जिस प्रकार से पिछले दिनों में आपने हम सबों से यूहन्ना नबी की पुस्तक के द्वारा बातें की, आज इस पत्री के द्वारा हम सब से बोले और बातचीत करें, हम सबकी सहायता करें ताकि हम आप में बलवंत होने पाए और यूहन्ना के द्वारा लिखे इस पत्री के द्वारा हम अपने जीवन में आशीषों को पा सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आज हम एक नई पुस्तक से अपने अध्ययन को आरंभ करने जा रहे हैं, नए नियम में से पहला यूहन्ना की पत्री के परिचय को हम लोग देखेंगे। कुछ टीकाकार यूहन्ना द्वारा लिखी गई इन पत्रियों को बाइबल के लिखित पुस्तकों में अंतिम मानते हैं। निसंदेह यूहन्ना की पत्रियां अंतिम लिखित पुस्तकें हैं जिन्हें यूहन्ना ही ने लिखा था, जिसने सुसमाचार भी लिखा है। यद्यपि तीनों पुस्तकें पत्रियां कहलाती हैं, पहला यूहन्ना का पत्र रूप में नहीं है। उसमें न तो आरंभिक संबोधन है और न ही अंतिम अभिवादन है। इसकी शैली उपदेशात्मक है। इसमें हम निश्चित समुदाय के प्रति प्रेम एवं चिंता करने वाले समर्पित पास्टर के उपदेश के चिन्ह को पाते हैं। यूहन्ना इफिसूस की कलीसिया का पास्टर था। इफिसूस की कलीसिया पौलुस ने स्थापित की थी। वर्षों से चली आ रही प्रथा के अनुसार यूहन्ना ने सबसे पहले सुसमाचार लिखा, फिर ये पत्रियां लिखी, तदुपरांत अपनी मृत्यु से पूर्व प्रकाशित वाक्य का वृतांत लिखा। तथापि अर्धाचीन वर्षों में हम में से कुछ का यह मानना हुआ है कि यूहन्ना ने अपनी पत्रियां सबके अंत में लिखी थी। इस प्रकार उसकी प्रथम पत्री का लेखन काल पत्मोस द्वीप समूह में उसकी उपस्थिति का समय है। इसके अनुसार इस पत्री के लिखने का समय लगभग सन 100 है। यूहन्ना की मृत्यु इफिसूस नगर में हुई थी और उसे वहीं पर दफनाया गया था। संत यूहन्ना आराधनालय का निर्माण 5वीं शताब्दी में यूहन्ना की कब्र पर जस्टिनियम द्वारा किया गया था। मेरे प्रियो, यूहन्ना की पहली पत्री को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें 2री शताब्दी के आरंभ में इफिसूस के बारे में देखना होगा। इफिसूस वरन संपूर्ण रोमी साम्राज्य में व्याप्त 4 मुख्य कारक थे। आइए हम देखें। पहला, मसीही विश्वास में शिथिलता आ गई थी। विश्वासी अधिकतर आरंभिक विश्वासियों की संतान थे और उनके नाती पोते थे। मसीही विश्वास नवीनता तथा चमक पर मलिनता आ गई थी। आरंभिक दिनों की महिमा एवं रोमांच विलोप होने लगा था। ओह, वह दिन जब पौलुस ने नगर में आकर इफिसुस की देवी डायना को चुनौती दी थी, संपूर्ण नगर में कोलाहल मच गया था। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 19 में इफिसुस के यहूदी आराधनालय में पौलुस के प्रचार पर प्रतिक्रिया और तुरमुस की पाठशाला में उसकी शिक्षाओं के प्रभाव को हम देखते हैं। उसने इस पाठशाला में 2 वर्ष तक प्रवचन किया था। उन दिनों विश्वासियों में मसीह के लिए कैसा महान प्रेम एवं उत्साह था। परंतु वर्षों बाद प्रभु ने यूहन्ना के द्वारा उन्हें संदेश भेजा जिसमें व्यक्त था प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसका 4 पद, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु यीशु तो इसकी चेतावनी पहले ही दे चुका था। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 12 पद में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इफिसुस की कलिसिया का प्रभु यीशु के प्रति समर्पण और भक्ति में कमी आ गई थी। अब हम दूसरी बात देखते हैं। मसीही विश्वास के उच्च मानदंड विश्वासियों को अलग करते थे, परंतु पहली पीढ़ी के विश्वासियों की संतान और नाती पोते अलग होना नहीं चाहते थे। पवित्र होने का मूल अर्थ है पृथक, परमेश्वर के लिए पृथक किए गए, अलग किए गए। मंदिर के पात्रों को पवित्र कहा जाता था क्योंकि वे परमेश्वर के प्रयोजन निमित्त अलग किए गए थे। मंदिर पवित्र था, सप्त का दिन पवित्र था। अब विश्वासियों को पवित्र होना था, उन्हें परमेश्वर के उपयोग के लिए अपने आप को अलग करना था। इफिसुस के विश्वासी समझौते के विश्वासी हो गए थे। वे प्रभु यीशु के शिष्यों के स्वरूप से भिन्न हो गए थे। प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 19 पद में कहा था, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। और अपनी महायाजकीय प्रार्थना में उसने अपने पिता से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 14 पद में, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा ही वे भी संसार के नहीं। उनमें यहूदी मसीही नीति शास्त्र में गिरावट और बाइबल के मानकों के प्रति तिरस्कार का भाव रखा था। मेरे प्रियो, अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरी बात को देखते हैं। विश्वासियों का बैरी सताव था। इफिसुस की कलिसिया का संकट बाहरी सताव नहीं भीतरी बहकावा था। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 24 पद में प्रभु यीशु ने इसकी चेतावनी पहले ही दे दी थी। झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। प्रेरित पौलुस ने इफिसुस की कलिसिया को लिखा प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 29 और 30 पद में, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िये तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। मेरे प्रियो, मसीही विश्वास को विनाश का नहीं पथ भ्रष्ट होने का संकट था। विश्वासी अपने विश्वास को प्रचलित तत्व ज्ञान में ढालने का प्रयास कर रहे थे। अब हम चौथी बात देखते हैं, ज्ञानवाद, आध्यात्मिक ज्ञान। यह तो आज भी प्रचलित है। रोमी साम्राज्य का मुख्य आधार ज्ञानवाद था। ज्ञानवाद के अनेक रूप थे। पदार्थ बुरा है, केवल आत्मा ही अच्छी है, यह मुख्य विचार था। संपूर्ण भौतिक संसार बुरा माना जाता है, अतः ज्ञानवाद देह को तुच्छ समझता है। उनका कहना था कि देह में आत्मा वैसे ही है जैसे गंदी मिट्टी में बीज। आधुनिक उदारतावाद भी वैसा ही है, जिसका मानना है कि सब मनुष्यों में अच्छाई की चिंगारी है और मनुष्य को उसका विकास करना आवश्यक है। ज्ञानवादी आत्मा को विकसित करके देह की बुराई से मुक्ति पाने का प्रयास करते थे। मेरे मित्रों, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विधियों की पराकाष्ठाएं थी, सुख दुख के प्रति उदासीनता, स्टोइक संप्रदाय और इंद्रियों द्वारा परम सुख पाना। इपिकुरियस यूनानी दार्शनिक के अनुयायी इन दोनों संप्रदायों के साथ पौलुस के वाद विवाद का उल्लेख प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 18 पद में है। तब इपिकुरी और स्टोइकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। स्टोइक संप्रदाय ने कहा, उनका मानना था कि बुद्धिमान मनुष्य को दुख सुख आदि भावनाओं से मुक्त रहना चाहिए। वे कठोर नियमों और अति संयम का पालन करते थे। इपिक्यूरियस संप्रदाय इपिक्यूरियस एथेंस के शिक्षक का अनुयायी था। वे यूनान के ओलंपिस पर्वत के देवताओं के उपासना में लगे थे, अर्थात वे उपासक थे। वे जीवन की खोज को सत्य की अपेक्षा भोग विलास मानते थे, परंतु वे यौन की अपेक्षा बौद्धिक संतोष के खोजी थे। आगे चलकर के उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी कि वे शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करें कि वह उन्हें कष्ट न दे। मेरे प्रियो, उनमें अनेक अंतर थे, परंतु दोनों ही प्रभु यीशु के मसीह होने का इनकार करते थे। मेरे विचार में यूहन्ना के मन में इन्हीं का विचार था जब उसने लिखा पहला यूहन्ना के पत्री 2 अध्याय उसका 22 पद, झूठा कौन है, केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। वे मसीह के देह धारण का इनकार करते थे, क्योंकि उनके अनुसार संपूर्ण देह बुरी है। इसी के प्रतिवाद में यूहन्ना ने स्पष्ट किया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 14 पद में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। और अपने इस पहली पत्री में 4 अध्याय के 2-3 पद में वह लिखता है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। मेरे प्रियो, ज्ञानवाद का एक विचार यह भी था कि परमेश्वर देह जैसी बुरी वस्तु में समाहित नहीं हो सकता है, अतः यीशु का शरीर वास्तविक नहीं आभासी था। जैसे कि जब वह चलता था तब तो उसके पद चिन्ह नहीं बनते थे। सिरिनियास अपने शिक्षाओं में अधिक युक्ति युक्त था। उसके अनुसार प्रभु यीशु मनुष्य था और अलौकिक मसीह भी था, बपतिस्मा पाने पर उसमें ईश्वरत्व समा गया और क्रूस पर उसे त्याग कर चला गया। अप्रमाणिक पत्रस के सुसमाचार में प्रभु यीशु के क्रूस के वचनों में लिखा है, हे मेरे सामर्थ्य, हे मेरे सामर्थ्य, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आरंभिक कलिसियाई पितरों ने इसी झूठी शिक्षा के विरोध में कहा, वह हमारे सदृश बना कि हमें अपने सदृश बनाए। यह मेरा अटल विश्वास है कि यूहन्ना ने ज्ञानवाद की झूठ के प्रतिवाद में यह पत्री लिखी थी। पहला यूहन्ना की पत्री में वास्तव में 5 गुना उद्देश्य निहित है। पहली बात हम देखते हैं, 1 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ अर्थात विश्वासियों के सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और दूसरी बात है 1 अध्याय के 4 पद में लिखा है, और यह बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। तीसरी बात 2 अध्याय के 1 पद में है, तुम पाप ना करो। चौथी बात 5 अध्याय के 13 पद में है, तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और पांचवी और अंतिम बात 5 अध्याय के 13 पद में लिखा है, परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो। यूहन्ना की पहली पत्री को नए नियम का पवित्रतम स्थान कहा जाता है। यह पत्री परमेश्वर की संतान को द्वार पार करवाकर पिता के घर की सहभागिता में ले जाती है। यह एक पारिवारिक पत्र है, जबकि पौलुस की पत्रियां कलिसियाई पत्र हैं। कलिसिया विश्वासियों की देह है जिसमें हम आशीष पाते हैं। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हमें यह स्थान प्राप्त होता है और हम परमेश्वर के परिवार में जोड़े जाते हैं। परिवार में हमारा संबंध टूट तो जाता है, परंतु अपने पापों को स्वीकार करने पर उनका पुनर्स्थापन होता है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं जिस कलीसिया में जाता हूं वहां के कलीसिया में साप्ताहिक अध्ययनों में मैंने पहला यूहन्ना की पत्री से ही अध्ययन आरंभ किया है, क्योंकि मेरे विचार में यह पत्री विश्वासियों के लिए कलीसियाई पत्रियों से अधिक महत्वपूर्ण है। और मैंने देखा कि इसके अध्ययन में उपस्थित अधिकाधिक बढ़ती हुई है, और कभी कभी तो इन अध्ययनों की उपस्थिति रविवारीय आराधना की उपस्थिति से भी अधिक हो जाती है। मेरे मित्रों, इस छोटी पुस्तक को समझना हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के 3 मुख्य भाग हैं, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर जीवन है। इस पत्री के आमुख में परमेश्वर को ज्योति बताया गया है, तदुपरांत यूहन्ना विश्वासियों को बालकों कहते हुए बताता है कि वे परमेश्वर के साथ सहभागिता कैसे कर सकते हैं। यूहन्ना अपनी पहली पत्री में सच्चे ज्ञानवाद परमेश्वर का ज्ञान प्रस्तुत करता है। मेरे प्रियो, यह हम सबों के लिए अति आवश्यक है कि हम इस पुस्तक की पृष्ठभूमि, इसकी रूपरेखा, इसके प्रस्तावना को जानें कि क्यों यह पत्री लिखी गई और किसके लिए यह पत्री लिखी गई। जब हम इन बातों को जान जाते हैं तो निश्चय ही जब हम इस पत्री का अध्ययन करते हैं तो हमारे जीवन के लिए यह अधिक लाभकारी होता है। यहां पर हमने देखा है कि यूहन्ना इस पत्री को सच्चे ज्ञानवाद अर्थात परमेश्वर का ज्ञान करके प्रस्तुत करता है। इन पत्रियों में उसने हमें बताया है, जिसे हम देखेंगे तीन तरीके में, कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर जीवन है। ये तीन चीजें हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। जब हम परमेश्वर की ज्योति में चलेंगे तो हम पाप नहीं करेंगे, और जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम दूसरों से भी प्रेम करेंगे, और हम इस बात को जान ले कि परमेश्वर जीवन है जो हमें जीवन देता है, तो हम दूसरों को भी परमेश्वर के निकटता में लाएंगे। मेरे मित्रों, यह पत्री छोटी जरूर है, परंतु हमारे जीवन के लिए अत्यधिक लाभकारी है। मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि आप इस पत्री के अध्ययन में अवश्य ही शामिल हों। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस परिचय के द्वारा आपने पुस्तक के बारे में जान लिया है, और जब हम अगले अध्ययन में अध्याय एक से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य करेगा। परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा आप सबों को आशीष दे और आप सबकी सहायता करे कि हम और अधिक परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मिलता है जीवन जहां।